भजन संहिता 127। भजन 127 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस भजन को हमें अपने हृदय की गहराइयों में रखना चाहिए। भजन 127 पद 1। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। मैंने बहुत वर्ष व्यर्थ परिश्रम किया है कि मैं परमेश्वर के घर को बनाऊं। मैं परमेश्वर के भवन को बनाने की कोशिश करता रहा। मैंने हर तरह के तरीके आजमा कर देखे। बहुत से लोग हर दिन इस विषय पर कार्यक्रम बनाते रहते हैं और कलीसियाओं को भेजते हैं। आप हर तरह के कार्यक्रम खरीद सकते हैं, चर्च की उन्नति के कार्यक्रम या वित्तीय कार्यक्रम। हमें हर समय नए नए कार्यक्रमों के पत्र मिलते हैं जो उन्होंने चर्च की उन्नति के लिए बनाए होते हैं। वे शुल्क लेकर आपकी संस्था को दिखाते हैं कि आप देखें कि आपको कौन सा कार्यक्रम अपनी संस्था के लोगों को प्रभावित करने के लिए अपनाना चाहिए। उनके पास हर चीज का लेखा होता है। ये ऐसा है मानो आप मूंगफली का व्यापार करने जा रहे हैं। वे आएंगे और लोगों के विचार जानेंगे और ज्ञात करेंगे कि मूंगफली किस तरह अधिक बेची जा सकती है। क्या लोग मूंगफली को पेपर में लिपटा या डब्बे में पसंद करेंगे, या क्या लोगों को टिन का डब्बा पसंद है, कौन सा रंग आदि। उनके पास हर चीज तैयार होती है। यही विधि उन्होंने चर्च के लिए भी तैयार की है। मैंने हर कार्यक्रम पर कार्य किया कि मैं यीशु मसीह का भवन बना सकूं, पर सब व्यर्थ रहा। मैं व्यर्थ में मेहनत करता रहा। जब तक घर को यहोवा ना बनाए, आप अपने पहिए को घुमाते रहोगे। ये सब व्यर्थ का परिश्रम होगा। भजन 127 पद 1। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करें तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यदि परमेश्वर हमारे घर को ना बनाए, अर्थात जब तक परमेश्वर हमारे घर को ना बनाए, आप जानते हैं कि आपका परिश्रम व्यर्थ है। आप कुछ नहीं कर सकते। हमें प्रभु पर भरोसा करना होगा। भजन 127 पद 2। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थी है। सवेरे शीघ्र उठकर कार्य न करना दुख भरी रोटी खाने के समान है। भजन 127 पद 2 में आगे लिखा है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। आप जानते हैं कि बहुत से लोग बिस्तर पर पड़े पूरी रात चिंता करते हैं। रात भर चीजों की चिंता में बिताना व्यर्थ है। अब भजनकार परिवार और परिवार की एकता के बारे में कहना आरंभ करता है और कहता है कि देश की शक्ति परिवार की शक्ति में है। इस बात की जानकारी होने पर कि ये सिद्धांत सत्य है, वो अपना ध्यान परिवार की ओर लगाता है और घोषणा करता है। भजन 127 पद 3। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। बहुत वर्ष पहले हमारे पड़ोस में एयरफोर्स का एक कैप्टन और उसका परिवार रहता था। इस परिवार के लोग बहुत दोस्ताना मिजाज के थे। सामाजिक विज्ञान के अनुसार यदि आपके फाटक पास पास है तो आपका अपने पड़ोसी से मेल जोल बढ़ना स्वाभाविक है। सामाजिक विज्ञान के अनुसार ऐसे मकान मित्रता के लिए अधिक अनुकूल समझे जाते हैं। समाजशास्त्री अपने सर्वेक्षण में आपको बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किससे मित्रता रखें। ये पागलपन की बात तो लगती है, परंतु उन्होंने ऐसा सर्वेक्षण किया है। हमने अपने पड़ोसी से मित्रता कर ली और इस मित्रता की नतीजा ये हुआ कि हमारे पड़ोसी ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। कुछ दिन बाद उनका तबादला हो गया। वो लड़ाकू विमान का चालक था। मुझे एक दिन उसका पत्र मिला जिसको मैं जीवन भर संभाल कर रखूंगा। वायुसेना में दोबारा बुलाए जाने से पहले वो एक महाविद्यालय में प्राचार्य था। उसने पत्र में तीनों पुत्रियों के बारे में लिखा। मैं कहता था कि बच्चे पृथ्वी पर महाविपत्ति है। मैं शादी के बंधन से घृणा करता था और अपनी लड़कियों के बंधन से भी घृणा करता था। मुझे अपनी उड़ानें अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं समुद्र के पार उड़ सकता हूं और बच्चों से अलग रह सकता हूं। उसने आगे लिखा, परंतु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जब से आपने उसका प्रेम मेरे साथ बांटा है और मैंने ये जाना कि उसको जानना और उसका अनुसरण करना कितना अद्भुत है, मैं अपने परिवार के बिना अकेला हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार सामान लेकर मेरे पास पहुंच जाए। उसने लिखा, मेरे अंदर छोटी बच्चियों के लिए प्रेम उमड़ रहा है। वे आशीष है, वे घरोहर है। ओह, परमेश्वर मनुष्य के जीवन को कैसा बदल सकता है। वो हमें बच्चों के सही मूल्यांकन सिखाता है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। भजन 127 पद 4 और 5। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तर्कश को उनसे भर लिया हो। उसका तर्कश बच्चों से भरा रहता है। वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करता संकोच न करेगा।